भगवते वासुदेवाय
भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ
ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ
ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ
ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ पहले मैं इस देश से दगरा और प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आज मैं यहाँ पर कुछ कथा करूँ और जो मेरे समक्ष जो वरिष्ठ भक्त बैठे हैं उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। इस देश सत्यसा गोविंद प्रभु सच्चिदानंद गोविंद प्रभु शिवा शक्ति माता जी मानसी राधिका माता जी और काफ़ी भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं और रवि प्रभु का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा स्लाइड शो उन्होंने लगा के रखा है गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निशांत प्रभु और राजू शेट्टी प्रभु जिनकी वजह से मैं सुबह थोड़ा बैठ के पढ़ पाया और कुछ तैयार कर पाया उन्होंने प्रसादम में सहायता की हमारी। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ है, कोई जानता है क्यों? गौर पूर्णिमा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव दिवस है। तो मैं और शिव कुमार प्रभु जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम कुछ भगवान के जो बचपन के पास टाइम है उसके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, पर क्योंकि मुझे इतना समय मिल नहीं पाया और मैंने कैलेंडर में देखा तो पता चला माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव दिवस है। So I just tried to prepare something on that. So Shripad Madhavendrapuri ki jo position hai wo bahut hi high hai. Koi janta hai kaun hai woh? Madhavendrapuri kaun hai? Madhavacharya. Hanuman ji Madhavacharya. Koi janta hai Madhavendrapuri kaun hai? Naam suna hai? कौन है माधवेंद्रपुरी? हाँ जोर से, हाँ वो ईश्वरपुरी के गुरु हैं। और ईश्वरपुरी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है?
स्वयं भगवान,
स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो सोचिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी और उनके गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो ये माधवेंद्रपुरी के बारे में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम किसके बारे में सुन रहे हैं या किसके बारे में बोल रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि माधवेंद्रपुरी का गुणगान कौन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, करेक्ट। वो तो है, वो सभी का गुणगान कर रहे हैं, पर चैतन्य चरितामृत के अंदर माधवेंद्रपुरी का गुणगान कौन कर रहे हैं? जैसे श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम की रचना किए हैं, ठीक है, तो व्यासदेव जी सभी का गुणगान कर रहे हैं। फिर किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है? शौनकादि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में, फिर विदुर और मैत्रेय मुनि के बारे में, और फिर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो उसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी कभी कभी बीच बीच में संवाद चलता रहता है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जो भक्ति है और उनके जो गुण है वो कौन बता रहे हैं? किसी को आइडिया है? कौन बता रहे हैं और किसको बता रहे हैं? जैसे हमारे स्कूल में आता था हु सेड टू हुम, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में चौथे अध्याय में भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं उनके बारे में, उनका गुणगान श्री चैतन्य Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is speaking to Sri Nityananda Prabhu and glorifying Shripad Madhavendra Puri. So, sochiye Bhagwan Swayam Sri Krishna va dusre purna purushottam Bhagwan Balram, no? Krishna aur Balram aapas mein charcha kar rahe hain. To agar Krishna aur Balram, hum sabhi to Krishna Balram ke bare mein charcha karte rehte hain, lekin Krishna Balram agar hamare bare mein charcha karenge to kaisa lagega? To Sri Krishna Balram Madhavendra Puri ke bare mein charcha kar rahe hain. Aur Krishnadas Kaviraj Goswami यहाँ पर उसको प्रस्तुत किए हैं और बहुत ही उत्तम प्रकार का ये वर्णन है और इस प्रकार का वर्णन करने की योग्यता कम से कम मुझ में तो नहीं है और ना ही मैं कुछ कह सकता हूँ, पर जो भी भक्तों से सुना है या महाराज से सुना है और शिक्षाष्टकम प्रभु का एक क्लास सुना था उसको एक रिपीट करने की कोशिश करूँगा. तो हमको ये समझना चाहिए कि हम जिस विषय वस्तु पर, जिस सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं वो कितना ऊंचा है. पर क्योंकि आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव दिवस है इसलिए हमने ये विषय चुना है कि हम इस पर कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता सकें. तो ये श्री गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण का चित्त आकर्षित करने के लिए हमें कथा करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं. तो वर्णन आता है कि श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन करते हैं, उनकी यात्रा का वर्णन करते हैं और उनकी यात्रा का वर्णन करते करते वे कहते हैं कि श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु वे घूमते घूमते जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं, वहां पर सौरभम भट्टाचार्य से वगैरह से मिलते हैं और फिर वे आगे बढ़ते हुए एक इस प्रकार के गांव में आते हैं जिसका नाम है, किसी को याद है, रेमुना. सुना किसी ने रेमुना के बारे में? रेमुना गांव है उड़ीसा में, नियर पुरी, जगन्नाथपुरी के पास ही है. रेमुना नामक एक ग्राम है, एक विलेज है, उस विलेज में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि रेमुना में एक बहुत ही सुंदर भगवान का श्री विग्रह है जिसका नाम है गोपीनाथ. श्री गोपीनाथ जी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित, बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का छवि वो श्री गोपीनाथ जी की है और वो गोपीनाथ जी के पास आते हैं, उनको देखकर भाव विभोर होकर तुरंत गिर पड़ते हैं उनके चरणों में और जैसे वो नीचे गिरते हैं श्री गोपीनाथ जी के सर पे जो मुकुट रखा रहता है वह मुकुट श्री चैतन्य महाप्रभु के सिर पे आके गिरता है. तो इसको देख के सभी भक्त चिल्लाते हैं हरि बोल. सो इस प्रकार का जब होता है तो चैतन्य महाप्रभु में जो जो विकार आते हैं वो बड़े प्रसन्नता से नृत्य करने लगते हैं और नृत्य करते करते वो गिरते हैं और गोपीनाथ जी के जो सारे भक्त रहते हैं वो देखते हैं और विस्मित हो जाते हैं कि अरे ये कौन है चैतन्य महाप्रभु ऐसा नृत्य कर रहे हैं. तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो भगवान का श्री विग्रह है जिसका नाम है गोपीनाथ, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ एक और नाम से जिसका नाम है खीर चोर गोपीनाथ, क्षीर चोर गोपीनाथ जिसको बोलते हैं. और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से और मुख्य रूप से नित्यानंद प्रभु को एक स्टोरी बताना शुरू करते हैं और उस स्टोरी में कहते हैं कि किस प्रकार ये जो विग्रह है भगवान का इसका नाम क्षीर चोर गोपीनाथ पड़ा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, भगवान ने स्वयं अपने एक भक्त के लिए खीर की चोरी की. सोचिए भगवान ने जब अपने लिए चोरी की थी तो क्या कहलाए, माखन चोर, और जब भक्त के लिए चोरी की तो कहलाए खीर चोर, खीर चोर गोपीनाथ. सो इस तरह से वो वर्णन करना शुरू करते हैं और बहुत ही उत्कृष्ट रूप में श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पूर्व श्री माधवपुरी आइला वृंदावन भ्रमित भ्रमित गेला गिरी गोवर्धन. वो कहते हैं कि वृंदावन में एक बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आश्चर्यजनक एक व्यक्ति आए जिनका नाम था श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, और वे घूमते घूमते कहां पर पहुंचे, वृंदावन में आए। वो कहां पहुंचे, श्री गिरी गोवर्धन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। तो गिरी गोवर्धन पे आए वो, और जैसे ही उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया वे बिल्कुल भाव विभोर हो गए और उस अवस्था में चले गए। और क्या उनके साथ होने लगा उनका वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रेम मत नहीं तर रात्रि दिन ज्ञान, क्षण उठे क्षण पड़े नहीं स्थान स्थान। वो कहने लगे कि जब माधवेंद्रपुरी आए तो वे भगवान के प्रेम में प्रेम मत इतने पागल हो गए, इतने एक्सटेसी में आ गए कि उनको ये ध्यान नहीं रहा कि ये दिन है या रात है। और क्षण उठे, कभी वो उठते थे और क्षण पड़े कभी वो गिरते थे, अर्थात वो उठते थे और गिरते थे, उठते थे और गिरते थे, नहीं स्थान स्थान। उनको ये पता नहीं था कि मैं कौन से स्थान पे हूं। तो इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी की दशा का वर्णन हो रहा है, और ये दशा का मतलब ये नहीं है कि ये कोई दुर्दशा है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि तो ये जो है ये मत अवस्था है, ये पागल की एक अवस्था है एक तरह से। पर ये किस तरह के का पागलपन है, ये कृष्ण प्रेम के लिए पागलपन है। तो कभी कभी हम इस संसार में देखते हैं इस तरह के लोगों को जो क्षणे उठे क्षणे पड़े जिनके साथ चलता रहता है कभी कभी। जैसे 31 दिसंबर 31 दिसंबर की रात को कई लोगों को हम ऐसा देखेंगे जो क्षणे उठे क्षणे पड़े, उठते हैं गिरते रहते हैं, नहीं स्थान स्थान, पता नहीं चलता कौन से स्थान पर, कभी कोई गटर में गिर जाता है तो फिर पुलिस के वैन घूमते रहती है पेट्रोल करते करते, और ऐसे छने उठे छने गिरे लोगों को ठिकाने लगाती है, उनको लेके जाती है। तो इस तरह को लोगों को हमने देखा है तो हम सोचेंगे कि यार ये ऐसा कुछ इनके साथ भी हो रहा है। ये जो अवस्था है तो सबसे पहले इसलिए मैंने बता दिया कि कौन माधवेंद्रपुरी है, भगवान उनके बारे में बखान कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है जो हमने कुछ पी लिया और हमको नशा चढ़ गया, नहीं, इनके अंदर भी नशा है, लेकिन कौन सा नशा है, प्रेम का नशा है। जैसे शराबी जो होता है, एक पियक्कड़ जो होता है, उसको छणे उठे छणे पड़े कौन कराता है, शराब का नशा कराता है। तो उसी तरह एक जो महान भक्त होता है उसको छणे उठे छणे पड़े कौन कराता है, प्रेम का नशा, कृष्ण के प्रेम का नशा कराता है। तो देखने में दोनों सेम लगेंगे, जैसे ब्रजराज प्रभु कह रहे थे कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, कि दो तरह के लोग इस दुनिया में हंसते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये साधारण है, और इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले ही कहा प्रेम मत, क्या कहा उन्होंने, प्रेम मत नहीं तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षण उठे क्षण पड़े नहीं स्थान स्थान। तो और देखिए, ऐसा नहीं कि जब माधवेंद्रपुरी आए शिव गोवर्धन का दर्शन करने के लिए तो बहुत बड़ा कोई कीर्तन चल रहा था, कोई बहुत बड़ा कीर्तन पार्टी चल रहा था वहां पे, नहीं, सिर्फ अकेले आए, अकेले उन्होंने गोवर्धन को देखा और भाव विभोर हो गए। हम लोग कई बार जब यात्रा पे जाते हैं महाराज के साथ, तब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, 3-3, 4-4 हजार डिवोटी साथ में जाते हैं और जोर जोर से हरि बोल चलते रहता है, मृदंग करताल जैम्बे पता नहीं क्या क्या बजता है, और इतने बजने के बाद, इतना भयंकर कीर्तन होने के बाद भी हमारे को कुछ होता नहीं है। और कभी कभी हम बड़े जोर से नृत्य करते हैं, छणे उठे छणे पड़े, कभी जोर से उछल के गिरते हैं, लेकिन ध्यान सब रहता है कि किधर हूं मैं, अभी कौन से स्थान पे आया हूं, परिक्रमा कितनी बाकी रही, 21 किलोमीटर है, हाँ अभी 19 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर बाकी है, या ये ध्यान रहता है कि हाँ अभी प्रसाद किधर मिलने वाला है, गोविंद कुंड पे प्रसाद मिलेगा अपने को, फिर नहीं मानसी सरोवर पे मिलेगा। तो ये सब ध्यान रहता है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि देखो गोवर्धन का वो दर्शन कर रहे हैं और उस दर्शन करके कैसे भाव विभोर हो रहे हैं वो, और अकेले, और किसी को बताने के लिए भी नहीं। नहीं तो कई बार हम दूसरों को बताने के लिए बहुत भाव विभोर होने का नाटक करते हैं। तो बताते हैं कि ये अवस्था जो है एक शुद्ध भक्त की होती है, तो ये जो अवस्था माधवेंद्रपुरी की हुई है इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है। और ये जो वर्णन कर रहे हैं, एक बार अष्टकम प्रभु बता रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को प्रचार करने की आज्ञा दी, कहा कि जाओ, तभी उन्होंने क्या कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञाए जाओ करी हो प्रकाश प्रति घरे घरे जाओ करो ई भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। वो बोलने लगे कि हे हरिदास हे नित्यानंद जाओ तुम मेरी आज्ञा पाकर तुम घर घर में जाओ और मुंह में तृण लेके लोगों के द्वार द्वार पे जाओ उनके चरणों में गिरकर एक प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो कि कृष्ण तुम्हारे माता है कृष्ण तुम्हारे पिता है कृष्ण तुम्हारे प्राण धन है कृष्ण का नाम भजो कृष्ण का नाम जपो और अपने आप को कृष्ण को समर्पित करो। तो इस तरह कर जाकर जब नित्यानंद प्रभु ने प्रचार आरंभ किया तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे इस देश में बैठे हैं प्रचार करने के लिए लेकिन फिर भी अच्छा व्यासासन है अच्छा माइक सिस्टम है अच्छे भक्त लोग बैठे हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर में जाके जैसे समझो अगर हम हमारी बिल्डिंग में कहे जैसे बहुत साल पहले आई थिंक 94-95 में मैं और मेरा दोस्त कृष्ण गोपाल प्रभु हम डालमिया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए उसी इलाके में जहाँ पर हमारा कॉलेज था और जा जाके हम घर घर में बटन दबाते थे और बुक के बारे में बोलते थे। तो एक भाई साहब ने दरवाजा खोला तो हमने कहा हरे कृष्णा उसने कहा हरे कृष्णा हमने कहा हम इस्कॉन हरे कृष्णा की तरफ से आए हैं उसने कहा बहुत अच्छी बात है हमने कहा हम आपके लिए ये पुस्तक लाए हैं बोले बहुत अच्छी बात है हमने कहा ये पुस्तक में बहुत ही ज्ञान है और आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है उसने कहा बहुत अच्छी बात है तो हमने कहा कि आप ये पुस्तक लेना चाहेंगे उसने कहा आप यहाँ से चले जाइए दरवाजा बंद कर दिया बोला भागो यहाँ से। तो इस तरह का वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते जब आगे बढ़े तो हर किसी से मिलकर यही बात कहते थे। तो नवदीप वासी थे वो कभी कभी डर रहे थे क्यों क्योंकि वहां पर दो खूंखार व्यक्ति थे जगाई और मधाई ट्विन ब्रदर्स। तो बताते हालत ट्विन्स तो नहीं थे लेकिन काम ट्विन्स जैसा ही करते थे जो काम गलत काम करते थे सब साथ में करते थे। तो नवदीप वासियों को लगा कि अरे ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कभी इनके पास चले जाएंगे तो उनको बचाना चाहते थे लेकिन एक वो दिन आ ही गया जब हरिदास ठाकुर जाके भिड़ गए उनसे और नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोलने लगे कि देखो इन दो भाइयों को कि कैसे ये एकदम निकृष्ट अवस्था में है ये और अगर इनको हमने भक्त बना दिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो यश है वो कितना दूर दूर तक फैलेगा तो चलो इनके साथ जाकर इनको प्रचार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चले गए उनको प्रचार करने के लिए और जैसे ही प्रचार करने के लिए गए तो जगाई मधाई ने अपने लाइफ में कभी लेक्चर सुना नहीं था पहली बार कोई आके उनको कहने लगा कि कृष्ण का नाम लो कृष्ण का नाम भजो कोई आके उससे कहता है एक दो पैग और मारो तो थोड़ा समझ में आता है ठीक है अपने लाइन का आदमी है और कोई आके उनसे ऐसा कहे कि अरे भगवान का नाम लो तो उन्होंने सोचा ऐसी उड्डंतता मेरे सामने आके भगवान का और तुरंत उसको मारने के लिए भागे। तो जैसे ही मारने के लिए भागे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग गए और भागते भागते जब अपना जान बचाया उन्होंने तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को कोसने लगे बोले कि अरे किधर चले गए तुम और जाके अद्वैत आचार्य को कंप्लेंट करने लगे। अब अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का बहुत अच्छा एक विशेष रिश्ता है रिलेशनशिप है। तो जब अद्वैत आचार्य को यह कहा गया कि देखो कैसा नित्यानंद प्रभु उन जगाई और मधाई के पास चले गए उनको प्रचार करने के लिए तो अद्वैत आचार्य ने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है एक पियक्कड़ ही दूसरे पियक्कड़ के पास जाएगा ना बोला पियक्कड़ मीन ड्रंकड़ तो एक एक ड्रंकड़ ही दूसरे ड्रंकड़ के पास जाएगा। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे। एक्चुअली अद्वैत आचार्य का कहने का भाव ये था कि नित्यानंद प्रभु भी पियक्कड़ है लेकिन कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं और वो लोग किसी और नशे में है तो उनका नशा दूर करने के लिए इस नशे की आवश्यकता है। तो इस तरह से कहने लगे तो तुरंत नित्यानंद प्रभु बोले इसमें मेरी क्या गलती है मैंने क्या दोष किया है ये आज्ञा मेरे को किसने दी मेरे से बड़े पियक्कड़ ने चैतन्य महाप्रभु उन्होंने मेरे को आज्ञा दी और इसके लिए मैं गया। तब ये दो पियक्कड़ मिलके एक तीसरे पियक्कड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है माधवेंद्रपुरी। तो बताते हैं दैट आवर सोसाइटी इज सोसाइटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल ड्रंकर्स एकदम सब जो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है एकदम डूबे हुए हैं तो इनके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो होता ऐसा है कि जब वो वहां पर जाते हैं माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पर्वत को देखते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद वे एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और अपना जप करने लगते हैं और काफी देर तक वहां पर बैठे रहते हैं। तो कीर्तन करते करते वहां पर उनके पास एक बहुत ही सुंदर सा बालक आता है एक ग्वाला ग्वाल बाल के वेश में मोर मुकुट धारण किए हुए, कमर में बंसी श्याम वर्ण पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं। और वह आकर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को पूछते हैं और वो कहते हैं कि हे गोसाई, आप कौन हो और आप यहां पर ऐसे बैठे हुए व्रत क्यों कर रहे हो? मैं आपके लिए दूध लेके आया हूं कुछ। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर क्यों आए माधवेंद्रपुरी के पास, क्योंकि माधवेंद्रपुरी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो बताते हैं कि जब कोई भगवान का नाम लेता है एक सच्चे मन से, तो भगवान वहां पर आते हैं। और जैसे भगवान ने स्वयं श्रीपाद नारद मुनि को कहा था, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो जब भी कोई भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, उनके मंत्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। तो बताते हैं कि भगवान को वहां पर आना बहुत ही आसान था। क्यों? क्योंकि भगवान वहां पर लोकली सिचुएटेड थे। जैसे हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज, जिनको जॉली स्वामी भी कहा जाता है, अभी वो इस संसार से तिरोधान हो गए, उन्होंने ये कहा था दैट पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। सो श्रीधर महाराज ने एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में एक छोटा सा एक जोक मारा था, एक तो उसमें कहा कि एक बार वृंदावन से एक वृंदावन का वासी एक किसी अमेरिकन की सहायता करता है और वो अमेरिकन उसको अमेरिका बुलाता है, बोलता तुम उधर आ जाना मेरे घर पे, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। तो वहां पर जाता है तो देखता है कि एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर का फोन है। तो टेलीफोन देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है, पूछता है ये फोन क्या है? तो पोप रहता है और वो पादरी, वो बोलता है कि ये फोन जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, इस फोन को उठा गया तो भगवान से बात होगा। उसने कहा अच्छा, तो उन्होंने बेचारा फोन उठाया और बात करने लगा, तो भगवान से बात की। बात करके थोड़ी जब 10 मिनट बात की तो उसने पूछा कि यार बिल भी तो आया रहेगा। तो उसने कहा कि कितना बिल दूं? तो उसने कहा $100, लेकिन नो वरी, मैं आई विल टेक केयर, उनको बिल देने की जरूरत नहीं। तो ब्रजवासी बड़ा कृतज्ञ होकर वापस आ गया वृंदावन और बोला कि जब भी आप वृंदावन आओगे तो मैं अगर आपकी कोई सहायता कर सकूँ तो आप आ जाना। तो वो वृंदावन आया पादरी और उसने देखा एक ब्लू कलर का फोन है। तो ब्लू कलर का फोन, बोला ये क्या है? बोला ये भगवान के साथ कनेक्शन है। तो अच्छा, उसने उठाया फोन और बात करना शुरू किया, 1 घंटे तक बात किया। बात करने के बाद फोन रखा और बोला अभी बोलो कितना डॉलर दूं? तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, खाली 1 रुपया हुआ है पर जाने दो, देने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा 10 मिनट बात किया, इतना सारा बिल आया था उधर, मैंने 1 घंटा बात किया, खाली 1 रुपया? तो बोला ये लोकल कॉल है, भगवान इधर ही, बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान आ गए। तो जहां पर भक्त लोग कीर्तन करते हैं वहां पर आ जाते हैं। एक श्री संप्रदाय की कथा आती है कि कुछ जो अड़वर थे वो एक बार यात्रा पर निकले, श्रीरंगम की यात्रा पे। और श्रीरंगम की यात्रा पे जाते जाते एक जब जंगल से गुजर रहे थे तो बहुत भयानक तूफान आया, वर्षा होने लगी और बहुत कड़ाके की बिजली चमकने लगी। और इस तरह से जब हुआ तो उनका साथ छूट गया और वे अलग अलग हो गए, 3 जन थे। तो जब जा रहे थे तो एक अड़वर ने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा एक झोपड़ा है, तो सोचा कि इस झोपड़े में हमें अपनी रात बितानी चाहिए। तो वो जैसे झोपड़े में घुसे तो झोपड़ा इतना छोटा था जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति सो सकता था। तो वो एक व्यक्ति उस झोपड़े में गया, सोने के लिए गया। थोड़ी देर के बाद किसी और ने दरवाजा खटखटाया, देखा कि दूसरे अड़वर भी वहीं पे आ गए। तो उसने सोचा कि जिस झोपड़े के अंदर एक व्यक्ति सो सकता है, उस झोपड़े में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो उन्होंने उसका स्वागत किया, ऐसा नहीं पूछा अरे यार किधर से आ गया तुम। फिर घूमते घूमते तीसरे अड़वर भी वहां पर आ गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो दोनों ने सोचा कि जिस झोपड़े में एक जन सो सकता है, 2 जन बैठ सकते हैं, 3 जन खड़े रह सकते हैं, तो सोचा चलो उनका भी स्वागत किया। देखो कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ जो हमारे पास कुछ होता है तो हम ही उसका भोग करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के साथ शेयर करने की। तो यहाँ पर ये जो अड़वर है हमको सिखा रहे हैं कि देखो किस तरह से। तो तीनों जन खड़े हो गए उस झोपड़े के अंदर रात भर, और जब 3 महान भक्त खड़े होंगे तो क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे भगवान का। तो भगवान का गुणगान करने लगे, उनके गुणानुवाद का वर्णन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और सुबह हो गई तो सुबह तीनों जनों ने सिर्फ एक चीज का रियलाइजेशन किया, only one realization came to their mind. उन्होंने सोचा कि कोई चौथा व्यक्ति भी था वहां पर. तीनों ने वो सोचा कि कोई चौथा व्यक्ति भी था. There was somebody else also, the fourth person there. और वो चौथा व्यक्ति कौन था?
भगवान.
तो बताओ, जिस झोपड़े के अंदर एक जन सो सकता है, दो जन बैठ सकते हैं, तीन जन खड़े रह सकते हैं, वैसे झोपड़े के अंदर भी भगवान घुस गए क्योंकि उनका कीर्तन चल रहा था. तो जब माधवेंद्रपुरी जैसे उत्तम कोटि के जो भक्त अगर भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान का प्रकट होना स्वाभाविक है. तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों फास्टिंग कर रहे हो. तो उनको देखते माधवेंद्रपुरी बड़े भावविभोर हो गए, उनके सौंदर्य को उन्होंने देखा और एकदम विस्मित हो गए. उनसे कुछ बोला नहीं गया कि वो कौन है. और फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन है. तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक बालक हूँ और गोप नाम है मेरा. वो कहते हैं, बालक कहे गोप आमी ई गाँव में वासी, आमार ग्राम ते के हा नह रहे उपवासी. बोला कि इन इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता जब तक मैं हूँ. तो आप इतनी देर से भूखे बैठे हो और भगवान का भजन कर रहे हो, तो कुछ स्त्रियों ने आपको देखा था जो पानी लेने के लिए आई, क्या आप भिक्षा भी नहीं मांग रहे हो, और इसलिए मैं आपके लिए दूध लेके आ गया. अब देखो, माधवेंद्रपुरी के पास जब मिल्क आ गया तो माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं सोचा कि यार इतनी बड़ाई की मेरी तुमने आके और खाली दूध लेके आए, साथ में कुछ बिस्किट वगैरह भी लेके आना था. नहीं, ऐसा नहीं सोचा. वो बस वो दूध ले लिए और देख रहे हैं कि मैं दूध ग्रहण करूं या भगवान का सौंदर्य देखते रहूं, क्योंकि भगवान का सौंदर्य देख के उनको कैसा महसूस हुआ वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं. बालक रे सौंदर्य पूरी रहे ला संतोष, तहार मधुर वाक्य गेला भोक शोष. तो उनके मधुर वाक्य सुन के उनकी जो भूख प्यास थी वो मिट गई और उस बालक को निखारने लगे. ऑब्वियसली जब जब श्याम सुंदर खुद हमारे सामने अगर आ जाए तो कोई उन्हें उनपे से नजर हटाना छोड़ेगा क्या. गोपियां प्रे करती है कि ब्रह्मा जी क्यों आपने पलके बना दी कि हम भगवान को एक तक देख नहीं सकते. तो माधवेंद्रपुरी भी सोचने लगे कि मैं बालक को देखूं कि दूध ग्रहण करूं. तो ये जो एक शुद्ध भक्त होता है उसके बीच में ये इस तरह की दशा हो जाती है. और हमारी दशा क्या होती है, हम सोचते हैं कि कौन सा इंद्रिय भोग पहले करूं, प्रसाद ग्रहण पहले करूं कि पहले सोऊं. तो माधवेंद्रपुरी उस बालक को देख रहे हैं और देखते देखते उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं. तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, ये दूध पी के रखो, मैं मटका लेने के लिए वापस आ जाऊंगा, अभी मेरी गाय इधर उधर कहीं चली गई, मैं जा रहा हूँ. तो बताते कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वो मटका नहीं लेना चाहते थे पर वो उनको कुछ देना चाहते थे. तो भगवान वापिस कुछ देने के लिए चले गए और माधवेंद्रपुरी ने जैसे ही उस दूध को ग्रहण किया तो उनका जो हृदय था वो एकदम भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो गया, एकदम इट वॉज लाइक ओवरफ्लोइंग. और फिर माधवेंद्रपुरी उस मटके को धोकर और थोड़ा सा वहां पर बैठ गए और उनको नींद नहीं आ रही थी, तो भगवान का नाम जप करने लगे. और जप करते 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 उनको थोड़ी सी नींद आ गई, वो भगवान की एक कृपा थी. तो अभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान के एक शुद्ध भक्त में हमारे में क्या अंतर है. जैसे हम भी खाने पीने के बाद सो जाते हैं, तो माधवेंद्रपुरी भी सो गए, लेकिन उनका सोना और हमारे सोने में बहुत अंतर है. क्योंकि शुद्ध भक्त अगर कोई कार्य करता है जो तमोगुण में है, जैसा कि सोना, वो भी शुद्ध सत्व में आता है. और हम लोग अगर कोई कार्य करते हैं जो शुद्ध सत्व का होता है, वो भी तमोगुण में आता है. फॉर एग्जाम्पल हमारी चैंटिंग, तो कई बार हमारा जब भी तमोगुण के अंदर चलते रहता है. जैसे एक बार गौर कृपा प्रभु बहुत साल पहले बता रहे थे कि अर्जुन और हमारे में क्या फर्क है. अर्जुन और हमारे में यही फर्क है कि जब कृष्ण उसके खेमे में गए तो देखा कि अर्जुन सो रहा है और सोते सोते गोविंद गोविंद कृष्णा इस तरह की श्वास निश्वास उसका चल रहा है. तो जब अर्जुन सो रहे थे तो भगवान का नाम ले रहे थे, और हम जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो हम सो जाते हैं. यही हमारे में फर्क है. तो माधवेंद्रपुरी को नींद आ गई और उस नींद के अंदर वही बालक छैल छबीला बांका छोरा वृंदावन का वो उनके सपने में आया. और सपने में आके कहने लगा कि हे माधवेंद्रपुरी, इस जंगल के पास झाड़ियों के अंदर मैं बहुत सालों से पड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत ठंडी गर्मी और इस तरह के सब हो रहा है, तो मुझे काफी कष्ट हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गांव वालों को लेकर आओ और मुझे इस झाड़ी में से निकालो और गोवर्धन पर्वत पर जाकर पर्वत के ऊपर मेरी स्थापना करो और मेरे जो शरीर है उसको साफ करो। मैं बहुत सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। और वह कहे कि मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कभी आओगे और मुझे यहाँ से निकालोगे, क्योंकि जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था तो पुजारी ने डर के मारे मुझे झाड़ियों में छुपा दिया था और खुद भाग गया था। तो मुझे यहाँ से वापस बाहर निकालो और मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। अभी भगवान के इस तरह के वाक्य को सुनकर कोई नास्तिक व्यक्ति सोच सकता है कि अरे ऐसा कैसे है, तो भगवान सपने में आकर आदेश दे रहे हैं लेकिन अपने आप की रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकते, अपने आप को झाड़ी में से खुद नहीं निकाल सकते। और जो भगवान अपने आप को झाड़ी में से नहीं निकाल सकता है वो हमारे को संसार में से क्या निकालेगा। इस तरह का किसी को ऐसा भ्रम हो सकता है, कोई सोच सकता है ऐसा कि वह भगवान दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु कैनॉट कम आउट एट हिज ओन फ्रॉम द बुशेस हाउ ही विल एक्चुअली डिलीवर अस फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो बताते हैं कि नास्तिक लोग इस तरह से सोच सकते हैं लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ऐसा करते हैं सिर्फ प्रेम के आदान प्रदान के लिए, प्रेम पुमर्तो महान, सिर्फ प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान ये सब कार्य करते हैं। जैसे अगर अद्वैत आचार्य इतना जोर जोर से पुकारते नहीं तो श्री गौरांग महाप्रभु इस दुनिया में नहीं आते थे। अगर प्रहलाद महाराज भगवान की इस तरह की तीव्र भक्ति नहीं करते तो हमें कभी नरसिंहदेव भगवान को देखने नहीं मिलता। तो उसी तरह से जैसे प्रभुपाद अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ पर बैठ के हरि कथा नहीं करते होते, गौर पूर्णिमा नहीं मनाते होते। तो बताते कि भगवान आदान प्रदान करने के लिए अपने भक्तों के साथ इस तरह की कुछ लीला करते हैं। तो वे माधवेंद्रपुरी के साथ इस तरह की लीला करना चाहते थे और ये बताना चाहते कि जब कोई ऐसा भक्त जो मेरे प्रेम से उन्मत्त होकर पूरी तरह से विफल होकर जब आएगा तो मैं उसके हाथों से बाहर आऊंगा और पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि मेरा रूप क्या है। तो इस तरह से भगवान ने जब उनको आज्ञा दी और भगवान कहने लगे श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी व्रजर स्थापितामि यहां अधिकारी, बोले कि मैं वही गोपाल हूं जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया था और मैं यहाँ का स्थापति हूं, तो मुझे ले जाकर गोवर्धन पर्वत पे स्थापित कर दो। तो माधवेंद्रपुरी ने जब ये स्वप्न देखा तुरंत उनकी नींद टूट गई और नींद जैसे ही टूटी वापिस वो विलाप करने लगे, वो वापिस रोने लगे और वो सोचने लगे कि अरे 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 क्या हो गया, ये वही भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं जो मेरे स्वप्न में आए वो खुद आके मुझे ये दूध का प्याला देके गए और मैंने उन्हें पहचाना नहीं, धिक्कार है मुझे। तो इस तरह से विलाप करने लगे और इस तरह से विलाप करते करते वे सोचने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा कि भगवान ने मुझे क्या आज्ञा दी है कि उनको झाड़ी में से निकालना है, तो तुरंत उनको झाड़ी में से निकालने के लिए चल पड़े। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत ही अहम मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं एक श्लोक के माध्यम से और कहते हैं कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई कष्ट हो जाता है कुछ, तो उस कष्ट को लेकर हम बैठ जाते हैं और भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। तो बताते हैं माधवेंद्रपुरी ने को कष्ट जरूर हुआ, वो फिर रोने चिल्लाने लगे लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा नहीं छेड़ी, भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। तो वो क्या कहते हैं, क्षण करोदन करी मन कैला धीर आज्ञा पैला लागी हैला सुस्थिर। वो कहने लगे क्षण क्षण एक क्षण एक रोदन करी के एक क्षण खाली वो रोए कि अरे क्या हो गया, भगवान का मैं दर्शन क्यों नहीं कर पाया, भगवान का मैं पहचान क्यों नहीं पाया। और वह रुदन करने के बाद तुरंत आज्ञा पालन करी, उन्होंने क्या किया कि भगवान की आज्ञा का पालन किया, तुरंत वृंदावन में गांव में गए, सभी भक्तों को बुलाया और कहा कि भगवान मेरे स्वप्न में आए हैं, यहाँ पर जंगल में झाड़ी में छिपे हुए हैं, हमको उन्हें निकालना है। तो सारे के सारे व्यक्तियों को और उस समय तक जो वृंदावन वासी थे वो माधवेंद्रपुरी की भक्ति समझ गए और सब कुदाल फावड़ा जो भी होता है वो सब लेके चले भगवान को निकालने के लिए। तो जब गए उन्होंने देखा कि भगवान का एकदम सुंदर स्वी विग्रह है, उसको बाहर निकाला। हालांकि बहुत विस्तृत वर्णन है वहां पर कि भगवान का किस तरह से अभिषेक हुआ, पर हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो उन्होंने भगवान को एक्सकवेट किया, उनको बाहर निकाला और भगवान इतने भारी थे कि कोई उनको उठा नहीं सका एक्चुअली। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि आवरण दूर करी करिला विदिते महाभारी ठाकुर के हो नरे चलाइते। वो बोले कि भगवान इतने भारी थे कि कोई उनको उठा नहीं सका, जब भगवान निकले तो इतने भारी हो गए थे कि कोई उनको उठा नहीं सका। फिर महादेन्द्रपुरी खुद आए, उन्होंने उनको उठाया और वृंदावन वासियों की सहायता से उनको गोवर्धन पर्वत पर लेके गए, एक आसन बनाया पत्थर का, उसके ऊपर गोपाल जी को विराजमान किया और एक दूसरा पत्थर पीछे रखा सपोर्ट देने के लिए, और फिर उनका अभिषेक किया। और उस अभिषेक का बहुत विस्तृत वर्णन है कि 900 घड़े पानी लेके आए वो गोविंद कुंड से, क्योंकि महादेन्द्रपुरी गोविंद कुंड के पास थे, और फिर उनका अभिषेक किया। और बहुत विस्तृत वर्णन है अभिषेक का, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आधा एक घंटा सिर्फ उसमें लग जाएगा अगर कोशिश करेंगे तो। तो बताते हैं कि इतना सारा अभिषेक हुआ, सबसे पहले उनको पानी से नहलाया गया, उनके बाद उनका शरीर साफ किया गया बराबर से, फिर उनको तेल से, सुगंधित तेल से उनकी मालिश की गई, फिर वापस उनको उनका और अभिषेक किया गया, दूध वगैरह जो भी था उन सबसे अभिषेक करते करते फाइनली सुगंधित जल से उनका अभिषेक कराया गया। और जो वृंदावन के वासी थे उन्होंने क्या किया, अपने घर में जितना भी कुछ था वो अन्नकूट सारा लेके आ गए और भगवान को ऑफर करने लगे, और सब भगवान ने क्या किया, वो सब चीज को खा लिया और खा के वापस रिटर्न कर दिया जिस तरह से गोवर्धन ने किया था। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग जो भगवान को ऑफरिंग करते हैं, समझो भगवान अगर सारा ऑफरिंग खाने लगे तो हम लोग टेंशन में आ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तो भगवान वापस रिटर्न कर देते कि ठीक है भैया ले लो खाने के बाद। तो इतना अभिषेक होने के बाद और फिर माधवेंद्रपुरी ने भगवान को पान वगैरह खिलाया, और खिला के जब प्रसन्न हुए तो भगवान के खाने के बाद भगवान का जो महाप्रसाद था वो दूसरों भक्तों को खिलाया, और पूरे भक्तों को खिलाने के बाद और जितने सारे गांव-गांव से लोग आए थे और वह कहने लगे कि आज मेरी तरफ से अन्नकूट होगा, आज मेरी तरफ से होगा, इस तरह से करते करते वो सब चल रहा था। और बाद में माधवेंद्रपुरी ने थोड़ा सा प्रसादम ग्रहण किया और ये सब 2 साल तक चलता रहा। और ये 2 साल तक चलने के बाद एक दिन फिर जब माधवेंद्रपुरी जब सो रहे थे तो वापिस से गोपाल जी उनके सपने में आए। बताते हैं कि एही मत वत्सर दुई करिला सेवन एक दिन पूरी गोसाई देखिला सपन। क्या हुआ कि पूरी गोसाई ने, माधवेंद्रपुरी ने वापस एक दिन सपना देखा और उस सपने पे श्री गोपाल जी आके, एक्चुअली ये जो श्री गोपाल जी है ये आज कहाँ पर है किसी को पता है? जिस गोपाल जी को माधवेंद्रपुरी ने निकाला, उनका अभिषेक किया वृंदावन में, वे गोपाल जी कौन है पता है? नो आइडिया, करेक्ट। ये वही गोपाल जी है जो आज नाथ द्वारा राजस्थान में श्रीनाथ जी के रूप में विद्यमान है। तो श्रीनाथ जी को जो विग्रह है यही विग्रह माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किए थे। तो वापिस वही गोपाल जी, वही श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे माधवेंद्रपुरी, इतनी गर्मी में मैं इतने साल तक पड़ा रहा उन झाड़ियों के बीच में, कंटीली झाड़ी में, तो मेरा शरीर बहुत जल रहा है और उस शरीर जलने की वजह से मुझे ठंडक नहीं मिल पा रही है, और इसलिए मेरा आदेश है कि तुम मलय देश में जाकर श्री जगन्नाथपुरी से मेरे लिए चंदन लेके आओ और कपूर लेके आओ, कैम्फर एंड सैंडलवुड। तो जैसे ही ये आज्ञा दी, माधवेंद्रपुरी ने बाकी भक्तों को कहा कि भगवान की सेवा अच्छी तरह से करने लगना, और वो निकल गए लेने के लिए। और जाते समय जब वो गए जगन्नाथपुरी, तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते समय बीच में क्या आया, रेमुना, ये रेमुना प्रांत आया, और उस रेमुना प्रांत में श्री गोपीनाथ जी के शिव विग्रह के उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके एकदम भाव विभोर हो गए और नृत्य करने लगे उनके सामने और एकदम प्रेमावेश में आ गए। और उस प्रेमावेश में आने के बाद जब वे भगवान का जब दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये भगवान जो है गोपीनाथ जी यहाँ पर मंदिर में डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ, ऐसा उनको लगा। He felt that the standard of DT worship is very very high in the गोपीनाथ टेम्पल। तो क्यों उनका ऐसा लगा, तो बताते हैं कि कई बार भगवान की शिव विग्रह देखकर एक शुद्ध भक्त को समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। जैसे एक बार प्रभुपाद पता नहीं कहीं वेस्ट में एक मंदिर में गए तो वहां पर भगवान का शिव विग्रह देखकर वो कहने लगे कि आज भगवान थके हुए लग रहे हैं। तो प्रेसिडेंट को समझ में आ गया कि प्रभुपाद को कैसे पता चला कि भगवान थके हुए हैं। तो ये हो रहा था कि उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और भक्तों को बहुत जल्दी भेजा जाता था, उस जमाने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तीव्रता पे चलता था, तो 1 घंटे पहले मंगल आरती होती थी, तो तो 5 के बदले 4 बजे भगवान को उठना पड़ता था। तो बताते कि 1 घंटे पहले उठने की वजह से भगवान थक गए थे, तो प्रभुपाद को तुरंत पता चल गया। तो फिर उस टेम्पल प्रेसिडेंट ने वापस से उसको जगह पे ला दिया। तो बताते शुद्ध भक्त देख के समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब माधवेंद्रपुरी ने ये देखा कि इतना हाई स्टैंडर्ड डीटी वर्शिप का वहां पर चल रहा है और इनको जो भोग ऑफर हो रहा है वो ऑर्डिनरी भोग नहीं है, वो बहुत ही स्पेशल भोग हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि जब भगवान को हम खिलाते हैं तो भगवान कभी कभी थोड़े एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो वो देखने लगे और उनको कहने लगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जरा मेरे को बताओ। तो वहां का जो पुजारी था उसने कहा है कि यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की खीर गोपीनाथ जी को ऑफर की जाती है, 12 पात्रों में, 12 पॉट्स में भगवान गोपीनाथ जी को खीर देते हैं, और वो खीर इतनी स्वादिष्ट होती है जैसे कि अमृत, और इसीलिए इस खीर को बोलते हैं अमृत केली। इस खीर का नाम है अमृत केली, और संसार भर में किसी भी जगह इस अमृत केली को और नहीं बनाया जाता, ये यही गोपीनाथ जी के पास मिलती है। तो माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि अरे इतना अच्छा प्रिपरेशन भगवान के लिए बनता है, अगर इसमें से थोड़ा सा अगर मेरे को मिल जाए तो ऐसा का ऐसा प्रिपरेशन मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। तो देखो ये एक शुद्ध भक्त के सोचने का तरीका है। वो क्या सोच रहा है कि इसमें से मेरे को मिल जाए कुछ थोड़ा सा तो मैं वैसा का वैसा अपने भगवान के लिए बनाऊंगा। और हम लोग क्या सोचते हैं कभी कभी जब ऑफरिंग चलती रहती है, घंटी चलती रहती है, तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ पहले बैंगन की सब्जी खाऊंगा बाद में स्वीट खाऊंगा, वो सब गणित चलते रहता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहता है। तो इस तरह का भाव उठता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी के हृदय में क्या भाव उठा कि मैं गोपाल जी के लिए इस तरह का प्रिपरेशन बनाऊंगा। और तुरंत ये सोचने के बाद उनको इतनी लज्जा आ गई, इतना ही फील सो अशेम्ड कि अरे भगवान का भोग लगने जा रहा है और मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूं, धिक्कार है मुझ पे। तो कहने लगे यही इच्छा लज्जा पान विष्णु स्मरण कैला हेन काले भोग सारे आरती भजिला। बोले कि उनको इतनी लज्जा आ गई और उन्होंने तुरंत विष्णु 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 का स्मरण करने लगा। तो माधवेंद्रपुरी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि बाई चांस हमारे से अगर कोई गलती हो तो क्या करना चाहिए, तुरंत विष्णु स्मरण करना चाहिए, तुरंत भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जैसे ही इस तरह की जब उनको इच्छा आई तो उतने लज्जित हो गए कि वो मंदिर से चले गए बाहर, और बाहर कहीं मार्केट प्लेस में जाके वहां पर बैठ गए और सोचने लगे, जप करने लगे कि अरे मैंने क्या बड़ा अपराध कर दिया कि भगवान का जो भोग था वह मैं पाने की कोशिश कर रहा था। तो जब इस तरह से चल रहा था तो रात को पुजारी ने भगवान के द्वार बंद किए और जाके सो गया, और बाद में उस पुजारी के स्वप्न में भगवान गोपीनाथ आए और उन्होंने कहा कि हे पुजारी उठो, तुमने जब भोग वापस लिया तब तुमने देखा नहीं, तुमने गिनती नहीं की कितने पॉट वापस बाहर आए, एक पॉट रह गया है जो मैंने छुपाया है, जिसकी मैंने चोरी की है, और वो चोरी कर मैंने पर्दे के पीछे रखा है। तो तुम जाओ उस पर्दे के पीछे से उस पात्र को निकालो, और मेरा एक शुद्ध भक्त है माधवपुरी जो कि एक मार्केट में बैठा हुआ है मार्केट प्लेस में, और जाकर ये खीर उनको दो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो तुरंत वो सेवक जग गया और जग के वो सोचने लगा कि अरे भगवान ने क्या आदेश दिया है। तो बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त को जो आदेश मिलता है वो उसका पालन उसी तरह से करता है जिस तरह से उसको आदेश मिला है। वो जाके पहले मार्केट प्लेस में ढिंडोरा नहीं पीटने लगा कि देखो गोपीनाथ जी मेरे सपने में आए और मेरे को बोले कि देखो मैंने चुराया है और ये देखो मेरे लिए बचा के रखा है, ऐसा कुछ नहीं किया तुरंत। पर उसने एक और शिक्षा दी जो कविराज गोस्वामी यहाँ बताते हैं। पुजारी क्या कर रहा है, स्वप्न देखी पुजारी उठी करीला विचार स्नान करी कपाट खुली मुक्त कैला द्वार। उसने क्या किया कि तुरंत स्नान किया सोने के बाद, ऐसा नहीं कि अरे भगवान ने अभी तो आ गए चलो भागो ले, और नहीं, जैसे ध्रुव महाराज जब उनके पास जब वैकुंठ का विमान आया था तो ऐसा नहीं कि जंप मार के अभी बस आ गया भागो ना अभी लाइफ खत्म कुछ नहीं हो सकता, नहीं, उन्होंने जाके सबके चरण छुए, वो एटिकेट फॉलो किया। उसी तरह संत तुकाराम जब उनके लिए गरुड़ आए उनको लेने के लिए तो तुरंत भाग नहीं गए, बोले चलो हो गया हरि बोल आमी जातो आमचा गावा आमचा राम राम घ्यावा, नहीं, वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगे, बोले अरे मेरी पत्नी को भी साथ में लेके जाना है क्योंकि इसी के वजह से तो मेरी ये स्थिति हुई है, क्योंकि उसने मेरे लिए इतने सारे काम किए हैं तो मेरे को उसको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से उसकी पत्नी उसमें आसक्त नहीं थी, वो अपने भैंस में आसक्त थी, तो बोले कि मेरे भैंस बच्चे सब लोग हैं मैं इधर ही रहती हूँ तुम जाओ। और उसको ऐसा लगता था कि तुकाराम रोज ऐसा बोलता वैकुंठ जा रहा हूँ वैकुंठ जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आ जाएगा भाकरे खाने के लिए, तो नहीं जा पाई। तो बताते हैं कि स्नान करी कपाट खुली मुक्त कैला द्वार, और तुरंत वो पात्र उठाया और भागे, और ऐसा नहीं कि पहले चलो भगवान ने उठाया पहले महाप्रसाद मैं ही ले लेता हूँ, भागे और कहने लगे कि अरे माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, मैं उनके लिए भगवान की खीर लेके आया हूँ, मैं खीर लेके आया हूँ। और इस तरह से जब गए तो माधवेंद्रपुरी उनके सामने आए और बोले कि मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, बताओ क्या है। तो उन्होंने भगवान की खीर दी और कहा कि स्वयं गोपीनाथ भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है, तो इस खीर का आस्वादन करो। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने ये सुना कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है, तो उनको लज्जा भी आई और बड़े भाव विभोर भी हो गए कि अरे, और तुरंत एकदम इस तरह का उनमें उन्माद होने लगा कि उसको देखकर पुजारी समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर भगवान किसी व्यक्ति के लिए खीर चुरा सकते हैं तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और ऐसा देखते ही पुजारी ब्राह्मण कुल का तुरंत उनको दंडवत मारा और वो कहते हैं ए तो सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत हैला। उन्होंने तुरंत दंडवत मारा, बोला अरे ये भगवान का कोई बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त हमारे सामने आता है तो चाहे वो कोई भी हो हमें उसे आदर प्रणाम करना है, तुरंत दंडवत उन्हें करना चाहिए। तो ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो हेड पुजारी हूँ गोपीनाथ जी का, मैं क्यों दंडवत मारूं। तो जब उनको ये दिया गया तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया कि वो पूरा खाया और खाने के बाद वो जो पात्र था वो पॉट था उसको तोड़ दिया और तोड़ के उसको एक कपड़े में लपेट लिया और रोज एक एक करके उस टुकड़े को खाते थे। तो इससे एक और शिक्षा मिलती है कि माधवेंद्रपुरी महाप्रसाद के पीछे खीर के लिए नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उस मटके को तोड़ा, उस मटके का जो टुकड़ा था वो रोज एक एक करके खाते थे। तो माधवेंद्रपुरी खीर के पीछे नहीं थे, तो जब उन्होंने सोचा कि ऐसी खीर मुझे मिल जाए तो मैं उसका आस्वादन करूंगा और गोपाल के लिए बनाऊंगा, ये शिक्षा नहीं मिलती इससे। इससे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के महाप्रसाद के प्रति उनकी कितनी आसक्ति थी। और कई बार हम लोग जब महाप्रसाद के पीछे भागते तो आइटम देखते हैं तो कौन कौन सा आइटम है, नहीं मेरे को एक काम करो जी वो वाला थोड़ा दो ना, वो नहीं मिला मेरे को, नहीं ये भी दो। तो इसके लिए प्रभुपाद ने एक बार क्या करवाया, सारा आइटम मिक्स, तभी पता चलता है। तो जब सारे आइटम दाल भी मिक्स हो गई, सांभर भी मिक्स हो गया, खीर भी मिक्स हो गई, तो फिर जब कोई महाप्रसाद देता होता प्रभु थोड़ा सा ही देना, ज्यादा नहीं चाहिए, और कोई अलग सा आइटम रहेगा तो ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद जी बड़े ना, ही वॉज अ मास्टर माइंड एक्चुअली, प्रभुपाद वॉज जीनियस, ही इज जीनियस एक्चुअली। सो ना पूरा तो बताते कि इस तरह से हमको ये शिक्षा मिलती है कि माधवेंद्रपुरी उस प्रसाद को किस तरह से ग्रहण कर रहे थे, और इसी तरह हमको महाप्रसाद को ग्रहण करना है जब भी आ जाए। तो वो जब उन्होंने ग्रहण किया फिर माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चुराई है। तो तुरंत वहां से वो भागने की कोशिश करने लगे। तो इससे और एक शिक्षा मिलती है, एक्चुअली ये पूरी स्टोरी में बहुत सारी शिक्षाएं हैं कि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता, प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे भागती है। अब हम देखेंगे आगे कैसे। तो बताते कि वो सोचने लगे कि अरे लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है तो लोग आएंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरे को दंडवत प्रणाम करेंगे। तो इस तरह का ना भाव सोचकर वो वहां से भागने लगे। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि कोई आके हमको प्रणाम करे, हमको दंडवत लगाए, अगर मैं ऐसा बन जाऊं तो क्या होगा। एनीवे तो वो वहां से जाने लगे, तो सीधा जगन्नाथपुरी जाने के लिए वो निकलने लगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि वो जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर पहले से लोगों को पता चल गया माधवेंद्रपुरी कौन है। सो कहने लगे चाली चाली आईला पुरी श्री नीला चल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेमे ते विवहल। बोले कि चल के वो नीलाचल में आए और जगन्नाथ देखी हैला प्रेमे ते विवहल। उनकी क्या दशा हो गई, वापिस जगन्नाथ को देख के वो पागल हो गए। तो ऐसा भाव हमारे में नहीं उठता कभी कि हम जब भगवान को देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे कि देखो अगर भगवान जगन्नाथ के सामने हम जाते हैं तो हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। प्रेम वसे उठे पड़े हंसे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। ये स्थिति बता रहे हैं वापिस से माधवेंद्रपुरी की कि उनके साथ क्या हो रहा था। प्रेम वैसे उठे पड़े हंसे नाचे गाए, उनको समझ में नहीं आ रहा, कभी हंस रहे कभी नाच रहे कभी गा रहे कभी उठ रहे कभी गिर रहे। सब कुछ उनके साथ हो रहा है। और जगन्नाथ दर्शने महासुख पाए, तो इस तरह से उनको इतना सुख मिल रहा था और वो सोचने लगे कि मैं भी बहुत सेफ जगह पे आ गया हूँ, अभी लोगों को मालूम नहीं है मैं माधवेंद्रपुरी कौन है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो प्रतिष्ठा से दूर भागता है, प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे भागती है। जैसे बिलो मंगल ठाकुर ने क्या कहा कि मुक्ति इज देयर यू नो एट माई डोर स्टेप फोल्डिंग हैंड्स, कि मैं अंदर आऊं क्या। तो उस तरह से, और तो नीति शास्त्र बताते हैं कि जो स्तुति है, ये जो प्रतिष्ठा है, वह अविवाहित कन्या के जैसे है। क्यों अविवाहित है? क्योंकि जो लोग उससे विवाह करना चाहते हैं वो उससे विवाह नहीं करना चाहती, और वो जिससे विवाह करना चाहती है वो उनसे विवाह नहीं करना चाहते। समझ में आ रहा है? I'll explain in English also. That स्तुति कन्या, the प्रतिष्ठा is like an unmarried daughter. She never gets married. Why? Because those who wants to marry her, she does not want to marry them. And whom she wants to marry, they don't want to marry her. तो एक शुद्ध भक्त, हमारे जैसे जो बद्ध जीव होते हैं वो प्रतिष्ठा के पीछे पीछे भागते हैं, प्रतिष्ठा उनको मिलती नहीं है। और शुद्ध भक्त जो प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे आती है। तो वहां पर भी लोगों को पता चल गया माधवेंद्रपुरी कौन है, सबको पता चल गया और सब आकर माधवेंद्रपुरी के चरणों में गिरने लगे। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अभी तो कोई चारा नहीं है, कहीं मैं जा नहीं सकता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरे को गोपाल जी ने भेजा है चंदन लाने के लिए, तो मेरी चंदन लाने के लिए सहायता कीजिए। तो सारे के सारे जो नीलाचल वासी थे वो मलय पर्वत पर जाकर चंदन और कपूर लेके आए और लाके माधवेंद्रपुरी को दिया। फिर माधवेंद्रपुरी ने क्या किया कि वो चंदन लेकर और वापस चलने लगे वृंदावन की तरफ गोपाल जी के पास। तो उनको रास्ते में ये जो टोल ऑक्ट्रे वाले तंग नहीं करे इसके लिए पूरा पेपर वेपर सब बना के दिया, और वो पेपर बना के देने के बाद बोला कि ठीक है अभी जाओ। सो बाद में जब वो पहुंच गए तो वापस वो जाते जाते रास्ते में वापस क्या आया, रेमुना आया। तो वो वहां पर गए, वापस गोपीनाथ जी का दर्शन किया और इस बार मांग के खीर खाया, बोला पहले इसके पहले के भगवान चुरावे मैं ही ले लेता हूँ। तो जब खीर लिए तो वापस तीसरी बार गोपाल जी उनको स्वप्न में आए, और स्वप्न में आके क्या बोले कि हे माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ और अभी तुमको वृंदावन तक आने की आवश्यकता नहीं है, ये चंदन और कपूर उठा के उतना दूर तक चलने की आवश्यकता नहीं है, ये जो कपूर तुमने लिया है और जो चंदन लिया है इसको तुम गोपीनाथ जी पे लगाओ, खीर चोर गोपीनाथ पे लगाओ। तो बोले कि गोपीनाथ जी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर एक और ये तथ्य उभर कर आता है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू लॉर्ड्स, टू डिग्रीज, गोपाल जी और गोपीनाथ जी दोनों सेम है। तो बोले तुम गोपीनाथ जी पे चंदन लगा लो, मैं समझूंगा मेरे पे चंदन लग गया। तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसा नहीं सोचा कि यार अगर इतना ही करना था तो मेरे को इतना दूर भेजा क्यों। कभी मन में ये भाव नहीं उठा कि अरे मेरे को इतनी मेहनत क्यों करवाई, अगर गोपीनाथ जी को तो एक फोन कर देता मैं जगन्नाथपुरी में, वो लोग लाके लगा देते थे, यार मेरे को क्यों इतना भेजा। नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा चंदन को ग्राइंड किया, कपूर को ग्राइंड किया और गोपीनाथ जी के उस पर लगा दिया। और वो लगाने के बाद जब उनको संतोष हुआ और जब उन्होंने गोपीनाथ जी को चंदन लगा लिया तो गोपाल जी भी खुश हो गए, माधवेंद्रपुरी भी खुश हो गए। तो इतना कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु इस कथा को वहीं पर विराम देते हैं और बड़े आश्चर्यचकित होकर वे नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि चर्चा किसके बीच में चल रही है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो वे नित्यानंद प्रभु से कहते हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करहो विचार, पूरी सम भाग्यवान जगत नाही यार। बोले कि हे नित्यानंद जरा विचार करो, जरा सोचो कि पूरी जो माधवेंद्रपुरी है, पूरी सम भाग्यवान जगत नाही यार, कि कौन ऐसा भाग्यवान व्यक्ति है जो माधवेंद्रपुरी से ज्यादा भाग्यवान है, कोई नहीं हो सकता। तो बताते हैं कि जिसके लिए भगवान स्वयं झाड़ी से बाहर आए, अपने आप को स्थापित किया, जो आज श्रीनाथ जी के रूप में जाने जा रहे हैं, उन भगवान ने उनको वापस आदेश दिया। पहले तो उनके लिए दूध लेके आए खुद, फिर उनको आदेश दिया मुझे झाड़ी में से निकालो, फिर उनको आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ, और फिर उस भगवान ने क्या किया, उनके लिए खीर चुराई और फिर उसको वापस आदेश दिया कि नहीं अभी चंदन गोपीनाथ जी पे लगाओ। तो बोले कि इतना सब कुछ भगवान डायरेक्ट माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं, तो वो कहने लगे कि पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं यार। तो बोले कि इतना भाग्यवान व्यक्ति इस दुनिया में कौन हो सकता है। वो कोई नहीं हो सकता है। तो कहे कि इसलिए माधवेंद्रपुरी की जो ग्लोरीज है वो बहुत ही महान है, कोई उसे समझ नहीं सकता। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक डिसाइपल को अपना गुरु एक्सेप्ट किया कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और उनके गुरु माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी की ये पोजिशन है। तो आज उन्हीं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस है, तो हमें उनके श्री चरणों पर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माधवेंद्रपुरी, जिस तरह का प्रेमोन्माद आप में है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और जिस तरह का प्रेमावेश में आप चैतन्य श्री गोपाल जी को और गोपीनाथ जी को और श्री जगन्नाथ जी को भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति का एक बूंद कम से कम मेरे हृदय में आए। अगर ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो बड़े ही प्रसन्न होंगे, और शायद हो सकता है कि हमारे में भी भक्ति के लिए थोड़ा सा कुछ एक चिंगारी, थोड़ा उत्साह मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे कथा को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंद।